169 नंबर के रजिस्टर में 89/24/69 का पैसा क्या है। पहले पहले बाप बच्चों को समझाते हैं, बच्चे सभी की बुद्धि में ये याद रहता है कि शिव बाबा हमारा सुप्रीम बाप भी है, सुप्रीम शिक्षक भी है, सुप्रीम सदगुरु भी है। अगर बुद्धि में ये आता है तो आस्तिक है, अगर ये बात नहीं आती है कि वो हमारा बाप भी है, शिक्षक भी है और सुप्रीम सदगुरु भी है, ये बात नहीं आती है तो क्या हुए? नास्तिक हुए। स्टूडेंट की बुद्धि में तो फट से आना चाहिए ना। अभी टीचर आया हुआ है या आके चला गया, कौन से सन की बात? वाणी तो फरवरी 1969 में रिवाइज हुई और चलाई गई 1 साल पहले। अठारह जनवरी को तो शरीर छोड़ दिया ब्रह्मा का तन। तो जो बाप, जो सुप्रीम शिक्षक है, जो सुप्रीम सदगुरु, वो आया हुआ कैसे साबित हो? आया हुआ है कि आके चला गया 18 जनवरी 1969 को? क्योंकि सदगुरु तो वो है जो साथ ले जाए। सदगुरु निराकार अकाल मूर्त कहते हैं। अगर मूर्ति ही नहीं, साकार स्वरूप ही नहीं, तो सदगुरु कैसे बनेगा? ऐसे भी तो मुरली में बोला है। घर में रहते हैं तो भूल जाते हैं, और कहाँ रहते हैं तो याद रहता है, है? मधुबन में रहते हैं तो याद रहता है कि वो हमारा बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। तो 18 जनवरी 1969 को क्या हाल हो, याद रहता है कि सतगुरु है साथ ले जाने वाला कि भूल गए? तो उस रुहाब से मुश्किल कोई समझते होंगे। हमारा सुप्रीम शिव बाबा आया हुआ है क्या? 18 जनवरी 1969 को चला नहीं गया, लेकिन अभी भी आया हुआ है। वो हमारा बाप भी है, वर्षा देने वाला, सुप्रीम टीचर भी है और हमको वापस ले जाने वाला सतगुरु भी है। ये याद आने से ही खुशी का पारा चढ़ेगा। चाहे वो 18 जनवरी 1969 को याद आए या उसके बाद में याद आए, कभी भी जब ये याद आ जाएगा, स्मृति में आ जाएगा कि वो हमारा बाप, टीचर, सतगुरु, सुप्रीम है और वो आया हुआ है, तो खुशी का पारा चढ़ेगा। नहीं तो दिनों दिन क्या उतर जाएगा, पारा उतरता जाएगा। खुशी का पारा उतरना माना उतरती कला होना, खुशी का पारा चढ़ना माना संगम युग में चढ़ती कला होना। पारा नहीं चढ़ेगा तो अपने ही दुख दर्द है, दुनिया की छीछी बातों की ख्यालातों में, कोई दुश्मनी आदि की ख्यालातों में बैठे रहेंगे। दूसरी बात, बहुत करके बच्चों से पूछते हैं विनाश में बाकी कितना समय है, क्या 7 वर्ष है? 69 का साल चल रहा है, वो छोड़ दो, 70 से गिनो तो कितने साल का घोषणा बोली हुई थी, 75 के लिए 10 वर्ष की घोषणा पूरी होने की बात बताई मुरलियों ने। तो क्या 7 वर्ष है घोषणा के अनुसार पूछते हैं? बोलो, ये पूछने की तो बात ही नहीं है कि कितने वर्ष है, क्यों ये पूछने की बात क्यों नहीं है? हैं? पूछने की बात इसलिए नहीं है कि आप हुए मर गई दुनिया, आज जीते जी मर जाओ तो आज ही दुनिया खलास हो गई। जो जीते जी मरते हैं वो मृत्यु लोक चुप को छोड़ते हैं और अमर लोक में जन्म लेते हैं। तो पूछने की बात नहीं, पहले तो हमको ये किसने समझाया है उनको तो समझो, पहले ये जानो, ये ज्ञान हमको समझाया किसने मूल रूप में, बताने वाला कौन है, समझाने वाला कौन है? पहले पहले देना ही है बाप का परिचय, क्या करना है? पहले पहले माँ का परिचय देना है कि बाप का परिचय देना है कि बच्चों का परिचय देना है, भाइयों का? पहले पहले देना ही है बाप का परिचय। हिरे हुए होंगे तो समझा लेंगे, पैसे हिरे हुए होंगे, बाप के साथ हिरे हुए होंगे तो समझा लेंगे, और बाप के साथ हिरे हुए नहीं होंगे तो समझा लेंगे कहाँ से, नहीं तो भूल जाएंगे। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं अपन को, आत्मा समझो, दूसरे को भी आत्मा की दृष्टि से देखो। ऐसी नहीं है, रुपए से एक आना भी मुश्किल किसी की ठहरती होगी, जैसे कि बुद्धि में बैठता ही नहीं है। क्या क्या नहीं बैठता है? हैं? कि वो हमारा बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। बाप कोई शराप नहीं देते हैं, बाप समझाते हैं ज्ञान बहुत ऊंचा है, ये राजा ही स्थापन होती है, रंग से लेकर के राव तक बनते हैं, राव बहुत थोड़े बनने हैं, बाकी रंग में भी नंबरवार होते हैं, लास्ट नंबर वाले की बुद्धि में तब कोई बात बैठ नहीं सकती है। जब कोई को भी तुम समझाते हो तो पहले पहले जो शिव बाबा 32 गुणों वाला चित्र है उस पर समझाना चाहिए, उसमें ये भी लिखा हुआ हो सुप्रीम फादर, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सतगुरु, सुप्रीम सतगुरु 32 गुणों वाले चित्र में सतगुरु कैसे, उसमें तो बिंदु है। ऐसा चित्रण है जिसका चित्र खींचा ही नहीं जा सकता, फोटो ही नहीं खींचा जा सकता, तो सदगुरु कैसे हुआ? सदगुरु तो काल जिसके काट खाता नहीं है, अकाल मूर्त है, जिसकी मूर्ति जरूर होनी चाहिए, सदगुरु मिला दलाल तो साकार रूप में भी होना चाहिए, क्योंकि मुरली में ही बोला है साकार ही नहीं बनेंगे तो सदगति कैसे करेंगे, क्योंकि सदगति तो होती है शरीर के साथ। तो 32 गुणों वाले चित्र में कैसे समझाएंगे सदगुरु को? बताएंगे कि इसमें जो बिंदु है वो है सुप्रीम सोल की यादगार, और जो लिंग रूप दिखाया हुआ है बड़ा रूप वो है साकार की यादगार, जो ज्ञान की लाइट से भरा पूरा है। गुण निधि है, गुणों का सागर है। जब कोई को भी तुम समझाते हो तो पहले पहले जो शिव बाबा का 32 गुणों वाला चित्र है उस पर समझाओ, उसमें ये भी लिखा हुआ हो सुप्रीम फादर, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सदगुरु, पहले ये निश्चय कराना है कि समझाने वाला सुप्रीम फादर तो कोई फालतू संशय नहीं उठावेंगे, क्योंकि बात है ना, तुम समझाते हो ये स्थापना हो रही है तो जरूर समझना चाहिए, इन्हों को कोई समझाने वाला है? और तो कोई भी मनुष्य मात्र ऐसे कह नहीं सकता कि ये राज्य स्थापन हो रहा है। पहले पहले बाप का निश्चय पक्का कराना है, हमको बेहद का बाप पढ़ाते हैं, ये कोई मनुष्य मत नहीं है, ये है ईश्वरीय मत। नई दुनिया तो जरूर बाप द्वारा ही स्थापन होगी ना, पुरानी दुनिया का विनाश ये भी बाप का ही काम है। ये निश्चय जब तक नहीं होगा, कौन सा निश्चय है कि बाप द्वारा ही नई दुनिया की स्थापना और बाप द्वारा ही पुरानी दुनिया का विनाश, और कोई धर्म पिता ये कार्य नहीं कर सकता, न किया है, ब्रह्मा भी नहीं कर सकता। ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण धर्म स्थापन होता है, नई दुनिया स्थापन नहीं होती। और वो तो शरीर भी छोड़ दिया, नई दुनिया तो बनी नहीं, तो पुरानी दुनिया का विनाश भी ये बाप का काम है, नहीं तो पूछते रहेंगे ये कैसे होता है। इसलिए पहले पहले तो श्रीमत की बात बुद्धि में बिठानी पड़े, तब आगे समझ सके। पहले पहले ये बुद्धि में बिठाना पड़े कि श्रीमत किसकी है, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कौन है जिसकी श्रीमत है, नहीं तो मनुष्य मत ही समझ लेते हैं। हर एक मनुष्य की मत अलग है, मनुष्यों की एक मत हो ही नहीं सकती। इस समय तुमको मत देने वाला एक ही बाप है, इस समय है 18 जनवरी 69 के बाद एक ही बाप है मत देने वाला। जब शरीर ही नहीं तो एक ही बाप कैसे, जरूर वानप्रस्थ अवस्था में है तो, लेकिन ज्ञान वाणी में नहीं लाता है। तो जो एक बाप है तुमको मत देने वाला, उनकी श्रीमत पर कायदे से चलना पड़े, उनकी श्रीमत पर। दूर क्यों कर दिया, जरूर वो पाठ भविष्य में प्रत्यक्ष होने वाला है। 69 में वानप्रस्थ था, वाणी से परे की स्टेज में था, वाणी में ही नहीं था तो गुप्त था। तो पहले पहले श्रीमत की बात बुद्धि में बिठानी पड़े, उनकी श्रीमत पर कायदे से चलना भी बड़ा मुश्किल है। इनकी श्रीमत पर जो अभी वाणी से परे की स्टेज में है 69 में, और 76 में जो वाणी में आने लगेगा, उनकी श्रीमत पर कायदे से चलना बड़ा मुश्किल है। बाप कहते हैं बच्चे दे ही अभिमानी बनो, ऐसा समझो कि हम भाई भाई से बात करते हैं, तो फिर कब लड़ना झगड़ना नहीं होगा। देवान में आया तो समझो वो नास्तिक है, ये नास्तिकों की दुनिया है। इनको कहा जाता है आसुरी संप्रदाय। अगर बाबा के बच्चे भी आपस में लड़ रहे हों तो कहेंगे कि उनको धनी बाप मिला है, जरूर नास्तिक के हैं, निर्धन के हैं, रावण संप्रदाय हैं, तो आपस में लड़ते झगड़ते हैं। नहीं तो कोई बात है तो बाबा को बोले, आपस में ही फैसला करने की क्या दरकार है, लाभ उठाने की आपस में क्या दरकार है। तो ये दुनिया ही नास्तिक होगी, देही अभिमानी नहीं है तो वो नास्तिक ठहरे, देही अभिमानी बने तब आस्तिक। देह अभिमान बहुत नुकसानकारक है, जरा भी लड़ते हैं झगड़ते हैं तो समझो नास्तिक है, बाप को जानते ही नहीं।
अगर ये जाने कि बाप इस सृष्टि पर आया हुआ है, साकार में है, सन्मुख नाजिर और हाजिर है, तो ऐसी भूल कब न करें। वो जैसे क्रोध के रंबे बन जाते हैं, वो आस्तिक नहीं ठहरे, बल कितना भी कहे हमारा बाप में प्यार है, परंतु ईश्वरीय कायदे के वर खिलाफ बात को तो रावण संप्रदाय समझो। कौन सी ईश्वरीय कायदे के वर खिलाफ बात हुई है? ये ईश्वरीय कायदा है कि अगर ईश्वर बाप सामने है, आया हुआ है, वो सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सदगुरु है, सुप्रीम जज है, तो सब द्वारा न्यारा करके जानेगा। फिर हमें आपस में लड़ने की दरकार क्या रही? अगर ऐसा करते हैं तो ईश्वरीय कायदे के वर खिलाफ करते हैं, फिर वो कौन से संप्रदाय हुए? वो है रावण संप्रदाय। जो कोई भी ईश्वरीय कायदे को उल्लंघन करते हैं तो रावण संप्रदाय समझो। वे अभिमान में है ना, कोई में भूत देखो व दृष्टि खराब देखो तो झट हट जाना चाहिए। भूत के आगे खड़ा रहने से और भूत प्रवेशता हो जाएगी। भूत भूत से लड़ते हैं, भूत अगर आए तो समझो पूरा नास्तिक है। देवताएं तो सर्वगुण संपन्न होते हैं, वो गुण नहीं है तो नास्तिक है। वो कब निश्चय भी न करें कि हम बाप से वर्षा लेंगे? नास्तिक वर्षा थोड़ी लेंगे, क्या कहा, सब धर्मों को वर्षा मिलेगा। लेकिन जो नास्तिक धर्म है, न बाप को मानता है, न स्वर्ग को मानता है, न नरक को मानता है, वो वर्षा नहीं ले सकता। जरा भी खामी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो बहुत सजा खा करके आपस में फिर प्रजा में जाना पड़ेगा। भूत से हमेशा दूर रहना चाहिए। भूत का सामना किया तो जरूर भूत आ जाएगा। भूत से कभी सामना नहीं किया जाता है। बाप जानते हैं इनमें भूत प्रवेश है, उनसे जाती बात भी नहीं करनी चाहिए। वो जैसे पूरा नास्तिक है। बाप कहते हैं ये है भूतों की दुनिया, जानवरों की दुनिया, बंदरों की दुनिया। ये भूत जब तक नहीं निकले हैं तो सजा भी खानी पड़ेगी, पद भी पा नहीं सकेंगे। कोई राव बन जाते हैं, कोई रंक बन जाते हैं, पढ़ाई से ही पद मिलता है। राव की भी दुनिया थी ना, अभी है रंकों की दुनिया। सभी में भूत की प्रवेशता है। भूतों को निकालने का पुरुषार्थ करना चाहिए। भूत की प्रवेशता वाले की चलन नास्तिकों जैसी हो जाती है, अज्ञानियों से भी बदतर। उनमें जैसे सभी भूत है, कोई भूत भागा नहीं है। बाप की पहचान नहीं है तो भूत निकलेंगे भी कैसे? भूत न निकलने का कारण क्या बताया? बाप की पहचान नहीं है तो भूत नहीं निकल सकते। आस्तिक बनने से ही देवता बन सकते हैं, नास्तिक बनने से रावणासुर बन जाते हैं। तो बच्चे नास्तिकों को आस्तिक बनाने वाले, तो फिर गुण भी ऐसे चाहिए। बहुतों से भूत निकलता ही नहीं है। बाबा मुरली में भी बहुत समझाते रहते हैं, किस्म किस्म के स्वभाव होते हैं। तो प्रदर्शनी आदि में पहले पहले तो बाप का परिचय देना है, बाप कितना लवली है, बाप हमको यह बनाते हैं। गहन है ना, मनुष्य से देवता की ये करत में लागी वार। मनुष्य से देवता बनने में कितनी देर लगी? नरक को नारायण बनने में कितनी देर लगी? ब्रह्मा को विष्णु बनने में कितनी देर लगी? वार नहीं लगी, देर नहीं लगी, एक सेकेंड। देवताएं थे कतिगुण, तो जरूर उसके पहले कलयुग था। ये सृष्टि चक्र का ज्ञान भी अभी तुम बच्चों की बुद्धि में, वहां देवताओं में ये ज्ञान रहेगा नहीं। अभी तुम नॉलेज फुल बनते हो तो पद मिल जाएगा, नॉलेज की दरकारी नहीं रहेगी। ये है देहद का बाप, جیسے تھے 21 پیڑھی تم کو سوریہ ونسی برسا ملتا ہے. تو ایسے باپ کو یاد کرنا چاہیے نا. بابا سدیو سمجھاتے ہمیشہ سمجھو, شیو بابا ہم کو سمجھائے رہے, شیو بابا اس طرح سے ہم کو پڑھائے رہے ہیں. ہمیشہ کیسے سمجھے, ہمیشہ کیسے سمجھے, 69 میں کیسے سمجھیں گے کہ شیو بابا ہم کو اس طرح سے پڑھائے رہے ہیں. بلانا بھی کتنے ہیں, سن 70 میں جو اگت واڑی چلائی اس نے اشارہ تو دے دیا کہ باپ کا ساکار پاٹھ بھی ہے. یہ ساکار سہارا سارے برہمن پریوار کے لیے بہت شریشٹھ سہارا ہے. لیکن سمجھنے والے ہی سمجھیں, وہ ہمارا باپ ٹیچر گرو ہے اور کوئی کی طاقت نہیں ہے جو پڑھائی سکے. یہ دیہ کی پڑھائی ہے, تم سمجھتے ہو آگے تو ہم تچھ بدھی کے, اس نالج کا کوئی کو ذرا بھی پتا نہیں ہے. اس لیے سمجھانے سمے آپ چڑی سے گھوٹ گھوٹ کر کے پہلے تو یہ سمجھاؤ, کرنے کی تو بات ہی نہیں. دادا پڑھائی پڑھانے والا کون ہے؟ پڑھائی پڑھانے والا وہ اونچ سے اونچ بات ہے, کرشن کی بات نہیں ہے. کرشن اونچ سے اونچ نہیں ہے. بابا نے سمجھایا ہے کرشن کا کوئی چرتر نہیں ہے سوائے شیو بابا کی. برہما کے تن میں بھی پرویش کرتا ہے تو جو بھی کاری کرتا ہے, جو بھی گرو پرتیک ہوتے ہیں وہ واسطے میں ہے کس کے؟ برہما کے ہیں. کہ انہیں کے دوارا کاری کرانے والا کوئی اور, تو کرشن کا کوئی چرتر نہیں ہے. کرشن کہو برہما کہو سوائے شیو بابا کی. برہما وشنو شنکر کے بھی چرتر نہیں ہو سکتے, چرتر ہے ہی ایکتا. تو تم کو جو تم کو منشی کے دیوتا بناتے ہیں, ابھی تم اس باپ کی قیمت پر چلتے ہو. تب ابھی منا تب ابھی جنگل میں ہی تم اس باپ کی قیمت پر چلتے ہو. تم باپ کے مددگار ہو نا. باپ نہیں ہوتا تو تم کچھ بھی کر نہیں سکتے. باپ نہیں تھا تو تم نے بس بناتے پہنی کپڑا کو بجایا. یہ برہما بھی برتھ نہ کے پہنی تھا جو پھر اب برتھ پاؤنڈ بننا ہے. پرجا پتا سبھی کا پتا ہی برتھ نہ کے پہنی تھا تو ان کے بچے پھر کیا ہوں گے؟ پرجا پتا تو سبھی کا باپ ٹھہرا نا. تم ابھی سمجھتے ہو یہ برہما اگر اور ہم برہما بھی اور ہم سبھی بھی بتنا کے تینی تھے, کچھ بھی جان نہیں تھا. نہ باپ کو نہ رچنا کے آدم جنت کو جانتے تھے. ابھی نمبر وار پرسار سنسار تم جان گئے ہو. تو پہلے پہلے مکھی ہے باپ کا پریچے. کرشن تو چھوٹا بچہ ہے, سٹک میں ان کی بے حد کی بادشاہی ہے. ان لکشمی نارائن کے راجی میں اور کوئی نہیں تھا. ابھی تو کلیوگ ہے, کتنے ڈھیر دھرم ہیں. ایک آدھ سناتن دیوی دیوتا دھرم کب استھاپن ہوا, کیسے استھاپن ہوا, یہ کوئی کی بدھی میں نہیں ہے. تم بچوں کی بدھی میں بھی نمبر وار پرسار سنسار ہے. کوئی تو ایسے ہیں جو کس کو بھی سمجھا دیں تو بگائے دے دیں. یس کون سی سروس کرتے ہیں؟ بگانے کی سروس کرتے ہیں یا تھمانے کی؟ کوئی تو ایسے ہیں کہ بات ایسے کریں گے کہ جو تھمنے والا ہو وہ بھی بھاگ جائے. کوئی ایسے بھی ہے کہ سمجھا دے تو ان کو سمے دے دے. دونوں طرح کے ہیں. نمبر وار ہے نا, تو پہلے پہلے باپ کی مہما پر سمجھانا چاہیے. ہم جانتے ہیں ضرور باپ سے ہم کو پہچان ملی ہے. باپ کہتے ہیں سرو کا قدرتی داتا بھی میں ہوں. کلپ کلپ میں تم بچوں کو یہ رائے دیتا ہوں کہ اپن کو آتما سمجھو اور مجھے یاد کرو. تو تمہاری آتما پتی سے پاون بن جائے گی. آتما ابھیمانی بنو. دوسرے کو بھی آتما روپ سے دیکھنے سے تمہارے پاپ وکاری خیالات نہیں آئیں گے. आत्मा ही शरीर द्वारा कर्म करती है ना, हम आत्मा है, ये भी आत्मा है, ये पक्का याद करना। तुम अभी समझते हो हम पहले 100% पावन थे, फिर हम पतित आत्मा बने, आत्मा ही बुलाती है बाबा आओ। आत्मा का अभिमान पक्का रहना चाहिए। अभी सभी संबंध भूल जाना है, हम आत्मा पीठों में रहने वाली है, यहाँ हम पार्ट बजाने आए हैं, ये भी तुम बच्चे ही समझते हो। तुम्हारे भी नंबर ला रहे हैं जिनको याद रहता है, भगवान पर आते हैं तो कितनी खुशी रहनी चाहिए। कृष्ण तो मनुष्य था, उनको फिर ले गए हैं द्वापर में। कृष्ण को द्वापर में क्यों ठोक दिया है? शूटिंग का क्या राज? जब द्वापर की शूटिंग शुरू होती है तो ब्राह्मणों की दुनिया में ही वो कृष्ण की सोल माना ब्रह्मा की सोल वो ब्राह्मण बच्चे के द्वारा प्रत्यक्ष होना शुरू होती है। तो शूटिंग की बात वो फिर इस रूप में दिखाई दी है कि कृष्ण द्वापर में आया है प्रत्यक्ष होने की बात। कृष्ण आए नई दुनिया कैसे स्थापन करेंगे अगर द्वापर में आए होते? बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि बन पड़े। अभी तुम समझते हो कितनी झूठ है। आज सनातन देवी देवता धर्म स्थापन हुआ श्रीमद् भगवत गीता से, जिसको फिर ठोक दिया है द्वापर में, वहां कैसे पति से पावन बनेगी? कुछ भी समझते नहीं है। संगम युग में बनेंगे या छेद द्वापर युग में बनेंगे? तो संगम युग की बात है ना, तमो प्रधान बुद्धि है तो नहीं समझते हैं। तो बाप बैठ समझाते हैं, वो बाप भी है, टीचर भी है और गुरु भी है। किसका बाप है, किसका टीचर है, किसका गुरु है? सबसे पहले पहले तो कृष्ण बच्चे का बाप भी है, उसका टीचर भी है और सतगुरु भी है। प्रैक्टिकल में तुम कहेंगे हमारा बाप है, हम उनके सिवाय और कोई को याद नहीं करते हैं। बाप कहते हैं बच्चे देह के सभी संबंध छोड़ो, मां भी कम याद करो और सब संबंधों को छोड़ दो। तुम सभी भाई भाई हो, कोई मानते भी नहीं, कोई तो मानते भी हैं, अगर नहीं मानते हैं तो समझो नास्तिक हैं। हम जो बाबा के बच्चे हैं तो पावन होना चाहिए। बाप को बुलाते ही नहीं कि बाबा आकर के हमको पावन विश्व का मालिक बनाओ। जो बाबा के बच्चे कब है? पति के मुंह तो पलीती है, तो बाबा के बच्चे हैं क्या? है तब तक नहीं है बाबा के बच्चे। किसके बच्चे हैं? शिव बाबा के बच्चे हैं तो पावन होना चाहिए ना। बाप को बुलाते हैं कि बाबा आकर के हमको पावन विश्व का मालिक बनाओ। तुम्हें तो पावन होने की बात ही नहीं होती है। पहले पहले शुरू में ही समझाओ ये शिव बाबा है, इनसे ये नई दुनिया स्थापन होती है। इनसे कैसे कैसे समझाओ शुरुआत में कि ये शिव बाबा है, बिंदु या कार्तिक का चित्र, इनसे नई दुनिया स्थापन होती है। कैसे कहेंगे? जरूर सैंबोलिक चित्र है, समझने की बात है। अगर पूछे विनाश कब होगा, बोलो पहले अलग को तो समझो। क्या बिंदु को समझो, ऐसे नहीं बोला। क्या बोला? पहले अलग को तो समझो। अलग को न समझा है तो पीछे की बात बुद्धि में कैसे बैठेगी? हम सत्य के बच्चे सत्य ही बोलते हैं, हम शिव बाबा के बच्चे हैं, भगवान बात है ना। भगवान उनको कहा जाता है जो सभी वृद्ध का बाप है। भगवान तो निराकार है, वो बाप टीचर है, सतगुरु है। क्या टीच भी करता है? बाप है ज्ञान का भी जरूर।
दूसरा कोई मनुष्य है बाप टीचर गुरु नहीं होता, दूसरा टीचर चौथा कोई नहीं होता। कौन होता? पहला मनुष्य। पहला मनुष्य बना जरूर कोई साकार है, सारी मनुष्य सृष्टि का बीज है। सन्यासियों को कब बाप टीचर नहीं कहेंगे, ٹیچر کی تو پھر اہم آبجیکٹ چاہیے. اہم آبجیکٹ تو انہوں کی کچھ ہے نہیں, تمہاری تو اہم آبجیکٹ ہے. کیا اس دنیا میں جو ٹیچرس ہیں ان کی کوئی اہم آبجیکٹ نہیں؟ براہمنوں کی دنیا میں بھی جو ٹیچرس ہیں ان کی اہم آبجیکٹ ہے؟ کوئی اہم آبجیکٹ ہے کہ نہیں؟ کیا ہم جو پڑھائی پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں اس سے ہم کیا بنیں گے؟ کیا اہم آبجیکٹ ہے؟ کیا جانتے ہیں کہ ہم اسی جنم میں نرس نارائن بنیں گے؟ اہم آبجیکٹ ہے نہیں ہے. تو ان اسکولوں میں تو کوئی اہم آبجیکٹ نہیں ہے ٹیچر, تمہاری تو اہم آبجیکٹ ہے. کیا اہم آبجیکٹ ہے؟ ہم کو اسی جنم میں نرسے سری نارائن جیسا دیوتا بننا ہے. اس کی جیون مکتی سنیاسی لوگ تو دے ہی نہیں سکتے, کیوں نہیں دے سکتے؟ کہ وہ اس بات کو مانتے ہی نہیں کہ اس دنیا میں جیون مکتی مل سکتی ہے. اگر اس دنیا میں جیون مکتی ملے گھر گرست میں رہتے تو پھر چھوڑنے کی بات ہی کیا ہے؟ کوئی منشی کس کی سدگتی نہیں کر سکتا, بھگوان ہو نہیں سکتے. جو اپن کو بھگوان کہلاتے ہیں وہ ہرنیا کشیپ ہے کیا؟ یا کہلانے کی تو بات ہی نہیں ہے. اگر کوئی کہلاتا ہے تو کیا ہوا؟ اگر کوئی بھوک سے یہ کہتا ہے کہ میں بھگوان ہوں, میرے اندر شیو بابا پرویش ہے, تو وہ کون ہوا؟ وہ ہرنیا کشیپ ہے. وہ بڑے سے بڑا دیتیہ ہے. اصروں کا کام ہی ہے ڈبونا. کیسے ڈبوتے ہیں؟ کیسے ڈبوتے ہیں؟ کون سا کارن طریقہ بتایا ڈبونے کا؟ شیو ہم ہی شیو باپ ہیں, ہم ہی بھگوان ہیں. اور ایشور کا کام ہے ڈوبنے سے نکالنا. من بدھی روپی آتما جو وکاروں میں ڈوبی ہوئی ہے, وہ من بدھی وکاروں سے ڈوبتے ہوئے سے اچھل کے کہاں جاتی ہے؟ اونچی اسٹیج میں آ جاتی ہے, منن چنتن منتھن کی اسٹیج میں آ جاتی ہے, دیوہن سے پڑے ہو جاتی ہے. یہ ہے ایشور کا کام. نکالنے والا تو ایک ہی باپ ہے. ایسے وکاروں کی دلدل میں پھنسے ہوئے کو, دیہ ابھیمان میں پھنسے ہوئے کو نکالنے والا تو ایک ہی باپ ہے. پھنسانے والے ہیں انیک اور نکالنے والا ہے ایک باپ. ہے پتت پاون, پتت راون بناتی ہے, بناتا ہے کہ بناتی ہے؟ بناتا ہے. پرش ہے کہ بناتی ہے؟ راون اور پھر مایا سب بھی لگائی دیتے ہیں. مایا راون, مایاوی روپ دھارن کرنے والا راون. باقی یہ سبھی ہیں بھکتی مارگ کے گرو لوگ, وہ بھکتی میں ہی گرا کر کے پتت بناتے ہیں. گراتے کائے میں ہیں, وہ پہلے بھکتی میں گراتے ہیں, نیچے ہی اترتے آتے ہیں نا. بھکتی کے گرو انیک ہیں. کیا یہاں کنٹراسٹ کیا ہے؟ بھکتی کے گرو انیک اور گیان مارگ کا سدگرو ایک. سدگرو ایک نراکار گایا ہوا ہے, گرو تو انیک ہوتے ہیں. یہ بھی سمجھتے ہو جو یہاں آتے ہیں آستک تو بنتے ہیں نا. کیا تھا آستک کون بنتے ہیں؟ جو یہاں آتے ہیں وہ آستک بنتے ہیں, نہیں آتے ہیں تو آستک بن نہ سکے. ناستک کے ناستک رہ جاتے ہیں. بےحد کے باپ کے پاس آتے ہیں, نشچے کرتے ہیں یہ باپ ہے, ٹیچر ہے, سدگرو ہے, تو آستک ٹھہرے. آستک کب بنے؟ ورسا لینے والے کب بنے؟ جب باپ کے سن مکھ آوے, پہلی شرط. اور دوسری بات, نشچے کریں, نشچے پتر لکھ کر کے دیویں. کیا نشچے پتر لکھ کر کے دیویں؟ کہ وہ ہمارا باپ ٹیچر اور ستگرو ہے, تب آستک بنے, تب سورگ کا ورسا لینے کے قابل بنے. پرنتو پھر مایا بلائی دیتی ہے, تو پھر حاضری چلن ہو جاتی ہے. جب کمپلیٹ دیوی گن آ جائیں گے تب لڑائی لگے گی. کیا تھا؟ لڑائی بھی کب لگے؟
जब कंप्लीट देवता बने, समय अनुसार तुम खुद समझेंगे अब जरूर कोई कर्मातीत अवस्था में पहुंचा है। फिर नंबर बार कर्मातीत बनते जाएंगे। क्या एक कर्मातीत स्टेज में पहुंचा, कर्म करते हुए कर्म के आकर्षण से 100% परे की स्टेज में कोई एक भी अगर पहुंच गया तो रिजल्ट क्या होगी? नंबर वन कर्मातीत बनते जाएंगे। अभी अर्जुन देरी है, अभी माना कभी। लड़ाई कड़ी लग करके फिर बंद हो जाएगी। क्या था? एक बार कड़ी लड़ाई लगेगी फिर बंद हो जाएगी, ऐसे नहीं वो आखिरी लड़ाई होगी। ये कब नहीं समझना कि अबांत होना है। कर्मातीत अवस्था हुई ही कहाँ है, अभी तो बहुत काम है। कितनों को पैगाम देना है, बाप से वर्षा लेने का तो सभी का हक है ना। 500 करोड़ जो भी मनुष्य मात्र है सबको बाप का पैगाम मिलना चाहिए। अभी तो करके लड़ाई जोर होगी, नेचुरल कैलेमिटीज भी आवेंगे, बहुत मरेंगे, परंतु मलहम पट्टी आदि की हॉस्पिटल भी है। क्या जब अंतिम विनाश होगा तो फिर हॉस्पिटल डॉक्टर आदि कुछ भी नहीं रहेंगे। क्या कहा? तृतीय विश्व युद्ध जो होता है उसमें तो रहेंगे, लेकिन जो आखिरी विश्व युद्ध होगा, चतुर्थ विश्व युद्ध, फोर्थ वर्ल्ड वार, उसमें न हॉस्पिटल रहेंगे न डॉक्टर्स रहेंगे। अभी देरी है, बाप बच्चों को सन्मुख बैठ समझाते हैं। आत्मा इस शरीर द्वारा 84 जन्मों का पार्ट बजाती है। अच्छा, किसे 84 जन्म नहीं तो कहेंगे कि 80-70 जन्म होंगे। जाना तो सभी को है ना, विनाश तो होना ही। आप अभी आत्माएं जा नहीं सकती है। बाप को जरूर याद करना है पावन बनने के लिए, किसी ने मेहनत है 21 जन्म के लिए स्वर्गवासी बनना है, कम बात है क्या? मनुष्य तो कह देते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ, अब सिर्फ कह देने से स्वर्गवासी हो जाएगा क्या? इस दुनिया में स्वर्ग है ही कहाँ जो स्वर्गवासी हुआ। इस दुनिया में क्या है? दुनिया ही सारी नरक की है, तो नरक में मरेगा तो कहाँ जन्म लेगा? नरक में ही जन्म लेगा। जो स्वर्ग में मरेंगे तो स्वर्ग में जन्म लेंगे, तो कैसे मरेंगे स्वर्ग में? कौन सा तरीका है? आप हुए, मर गई दुनिया, उस दुनिया से, देह की दुनिया से, देह के संबंधों की दुनिया से मर जाए, एक बाप की श्रीमती पर चलना है। कितना अज्ञान है, कुछ भी समझ नहीं सकते हैं। तुम बच्चों को तो बड़ी खुशी रहनी चाहिए, भगवान हमको पढ़ाते हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं, बड़ी खुशी का आधार क्या बताया है? बड़े से बड़ी खुशी का आधार क्या बताया? मनुष्य पढ़ाते हैं, ये बड़ी से बड़ी खुशी की बात नहीं है। भगवान बैठे हमको पढ़ाते हैं, ये है ऊंचे से ऊंची खुशी। किस लिए पढ़ाते हैं? विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते हैं। खुशी एक होती है स्थाई और दूसरी होती है अल्पकाल के लिए। तुम्हारी खुशी कैसी होनी चाहिए? एवर लास्टिंग, एक बार पक्का पक्का निश्चय बुद्धि हो जाए, फिर ऐसा निश्चय पक्का हो कि कभी उखड़े नहीं, अमरनाथ का अमर बच्चा बन जाए। ऐसे नहीं कि अभी अभी निश्चय हुआ और अभी अभी निश्चय टूटने लग पड़े। जो नहीं पढ़ेंगे, नहीं पढ़ावेंगे तो उनको खुशी क्या होगी? आश्रुगुणों को भगाना है। कितना समझाते हैं फिर भी समझाना बड़ा मुश्किल, समझते ही नहीं। जैसे जेल वर्ड्स होती है ना, बड़ी बड़ी जेल में जाना पसंद करते हैं, आदत पड़ जाती है। यहाँ भी ऐसे کچھ نہ کچھ ایسا کرتے ضرور ہیں جو گرو جیل میں جائے سجائیں کھانی پڑے. کون سی گرو جیل ہے یہاں براہمن کی دنیا میں؟ یہ ہے گیان گرو جیل. کیسی گرو جیل ہے؟ یہاں بھی تیار جیل ہے. تین ہڈیوں کی جیل. کون سی تین ہڈی پاٹ بجانے والے؟ جمع وشنو اور شنکر. ان کی بھی جیل ہے. جیل میں جا کے گرتے ہیں. انہیں جیل میں ہی رہنا اچھا لگتا ہے. عادت پڑ جاتی ہے. کوئی نہ کوئی وکرم کرتے رہیں گے. کرم بھوگ دیکھو کتنا ہے. جب تک کرم بھوگ ہے تو یہ نشانی ہے اس بات کی ہے. اس بات کی نشانی ہے کہ کرماتیت اوستھا نہیں ہوئی ہے. ضرور کوئی نہ کوئی کرم کا آکرشن رہا ہوا ہے. اب محنت کرنی ہے. کوئی سے بھی مایا کا طوفان نہ آئے. بچوں کو تو یہ نشچے ہے. باپ نے ہم کو انیک بار منشیہ دیوتا بنایا ہے. یہ بدھی میں آئے تو بھی ہو سوباگی. یہ بےحد کا بڑا اسکول ہے. وہ ہوتا ہے حد کا چھوٹا اسکول. باپ کو تو بہت ترس پڑتا ہے. کیسے سمجھاؤں؟ کوئی کوئی سے بھوت نکلتا ہی نہیں ہے. دل پر چڑھنے بدلی اور ہی گر پڑتے ہیں. کوئی بچیاں تو تیار ہو رہی ہیں انیکوں کا کلیان کرنے کے لیے. کوئی تو میرا کلیان بھی کرتے ہیں. کلیان نہیں کرتے ہیں تو ضرور اکلیان ہی کرتے ہوں. سروس نہیں کرتے ہیں تو ضرور ڈس سروس ہی کرتے ہوں. اچھا میٹھے میٹھے سکل دے روحانی بچوں پر. روحانی باپ با دادا کا یاد پیار گڈ مارننگ. روحانی باپ کی روحانی بچوں آج کی اگتوانی ہے 28-677 کی پیج نمبر 283. ہیڈنگ دیا ہے ویسٹ مت کرو اور ویسٹ کم کرو. آواز سے پرے اپنے نراکاری اسٹیج اور آکاری اسٹیج جہاں اشاروں کی بھاشا زیادہ ہے ارتھات مووی ہے. دونوں ہی استھتی میں ساکاری شکتی کے سمان آواز نہیں. تو ایسے آواز سے پرے استھتی اچھی لگتی ہے. کون سی دونوں استھتی کی بات بتائی؟ آکاری استھتی اور نراکاری استھتی. مکھ دوارا سننا سنانا اس سے اوپر اپنی وتی دوارا دشتی دوارا وائبریشن دوارا اپنے شیش انوبھوں کے پربھاؤ دوارا کسی آتما کی سیوا کرنا ارتھات سنانا و پریچے دینا سمبند جوڑنا اس بات کے انوبھوی بنے ہو. جیسے وانی دوارا سمبند جوڑنا اس کے انوبھوی ہو. جیسے وانی دوارا ڈائریکشن ملے کہ ان آتماؤں کی وتی و دشتی و شیش انوبھوں کے پربھاؤ سے سیوا کرو تو کر سکتے ہو. بس اس کو وانی دوارا کر سکتے ہو. جیسے وانی دوارا آتماؤں کو باپ سے سمبند جٹانے کے نمبر وار نمت بنتے ہو ویسے اپنی سوکشم استھتی کے ماسٹر سب شکتیوان ماسٹر گیان سوری کی استھتی دوارا آتماؤں کو سوئم کی استھتی و باپ کے سمبند کا انوبھو پاور فل واتاورن وائبریشن و سوئم کی شکتی سوروپ کے سمپرک سے انہیں بھی کرائے سکتے ہو. کیونکہ جیسے سمے سمیپ آتا جا رہا ہے پانڈو سینا کے پرتیک ہونے کا پربھاؤ گپت روپ میں پھیلتا جا رہا ہے. سیوا کی روپ ریکھا سمے پرمان اور سیوا پرمان پریورتن اوشی ہوگی. اس سمے کی بات بتائی ہے کہ پانڈو سینا کے پرتیک ہونے کا پربھاؤ بڑھتا جا رہا ہے. کون سی سن کی بات ہے؟ 77. سیوا کی روپ ریکھا سمے پرمان سیوا پرمان پریورتن ضرور ہوگی. یہی روپ ریکھا نہیں چلتی رہے گی سول وانی کی سیوا نہیں چلتی رہے گی. کیا ہوگا؟ اب ویکت اسٹیج میں سیوا یہ بڑھے گی. منتا سیوا جیسے آج کل بھی سائنس دوارا ہر چیز کی کوانٹیٹی بجائے کوالٹی میں لائے رہے ہیں. ऐसा छोटा सा रूप बनाए रहे हैं जो रूप छोटा हो लेकिन शक्ति अभी तो बड़ी हुई हो। क्या संगठन छोटा हो लेकिन उसमें पावर बहुत बड़ी हुई हो। जैसे मिठास के विस्तार को सैक्रीन के रूप में लाते हैं, विस्तार को सार में ला रहे हैं, इसी प्रकार पांडव सेना अर्थात साइलेंस की शक्ति वाली तेज छात्र में जो एक घंटे के भाषण द्वारा किसको परिचय दे सकते हो वो एक सेकंड की पावरफुल दृष्टि द्वारा, पावरफुल स्टेज द्वारा, कल्याण की भावना द्वारा, आत्मिक भाव द्वारा स्मृति दिला सकते हो, अपरोक्ष साक्षात्कार करा सकते हो। अभी ऐसी प्रैक्टिस की आवश्यकता है, इसके लिए दो बातों की जरूरत जिससे ऐसी श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बन सकते हो। वो कौन सी दो बातें, कौन सी दो बातों की तरफ विशेष अटेंशन दिलाते जानते हो, कौन सी होंगी? एक तो चार हो और ये अटेंशन दिलाते हैं कोई भी चीज वेस्ट मत करो, कोई भी चीज, और दूसरी बात वेट कम करो। वो लोग तो शरीर की वेट कम करने के लिए कहते हैं लेकिन बाप दादा आत्मा के ऊपर जो बोझ है जिस बोझ के कारण उसी स्टेज का अनुभव नहीं कर पाते हो तो वो वेट को कम करो। एक वेस्ट मत करो और दूसरा वेट कम करो, इन दो बातों के ऊपर विशेष अटेंशन चाहिए। अपनी शक्तियां व समय वेस्ट करने से जमा नहीं होती है और जमा न होने के कारण जो खुशी व शक्तिशाली स्टेज का अनुभव होना चाहिए वो चाहते हुए भी नहीं कर सकते। जैसा आप श्रेष्ठ आत्माओं का विश्व कल्याणकारी बनने का कार्य है उसी प्रमाण समय व शक्तियां न सिर्फ अपने प्रति लेकिन अनेक आत्माओं की सेवा के प्रति भी स्टाफ जमा होना चाहिए। अगर व्यस्त होता रहेगा तो स्वयं भी अपने को भरपूर अनुभव नहीं करेंगे। जैसे आजकल की गवर्नमेंट भी बचत की स्कीम बनाती है वैसे अपने प्रति आवश्यक समय व शक्तियों में से इकोनॉमी का लक्ष्य रखते हुए बचत करनी चाहिए क्योंकि विश्व की सर्वात्मा आप सिर्फ आत्माओं का परिवार है। ज्यादा सर्वात्मा है, सर्वात्मा माने कितनी आत्माएं, विश्व की सर्वात्मा माने कितनी, जो भी 500 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं वो सब आप श्रेष्ठ आत्माओं का परिवार है। माना सारी वसुधा ही हमारा कुटुंब है। जितना बड़ा परिवार होता है उतना ही इकोनॉमी का ख्याल रखा जाता है कि हमारा बहुत बड़ा परिवार है तो उस बड़े परिवार को मेंटेन करने के लिए बचत की स्कीम करनी है। आप जैसा बड़ा परिवार और किसी का हो सकता है क्या है? किसके जैसा बड़ा परिवार? रूहानी स्टेज में रहने वाले जो रुद्रमाला के मन के हैं जो बीज रूप आत्माएं हैं उनका जो परिवार है कितना बड़ा परिवार है? रुद्रमाला बड़ी से बड़ी कितने मनकों की है? 500 करोड़ मन से ये है बड़ी से बड़ी रुद्रमाला, बड़े से बड़ा परिवार। तो सब आत्माओं को सामने रखते हुए स्वयं को बेहद की सेवा के निमित्त समझते हुए अपने समय और शक्तियों को कार्य में लगाते रहो। मात्र रचना की स्थिति स्मृति में रहती है वह अपने प्रति ही कमाया और खाया व कुछ खाया और कुछ गवाया, ऐसे अलवेले होकर के चल रहे हो क्या? तो अपने सर्व खजानों की बजट को बनाओ। कितनी बड़ी जिम्मेवारी का कार्य उठाने वाली आत्मा अगर जमा नहीं होगा तो कार्य कैसे सफल कर सकेगी? ड्रामानुसार होना ही है, ये हुई नाली की बात। लेकिन ड्रामा में मुझे भी निमित्त बन सेवा द्वारा श्रेष्ठ प्राप्ति करनी है, ये लक्ष्य रखते हुए हर खजाने की बजट बनाओ। बजट में लक्ष्य क्या रखना है? स्लोगन याद है ना, कम खर्च बाला नसीब। जो कम खर्च करने के स्वभाव वाला होता है उसका भाग्य बाला होता है, नसीब ना भाग्य। हर खजाने को चेक करो कितना जमा है, उस जमा के खाते से हर की आत्माओं की सेवा हो सकती है। हर एक सब्जेक्ट की भी चेकिंग करो कि हर सब्जेक्ट द्वारा बेहद की सेवा के निमित्त बन सकते हैं। बात सिर्फ ज्ञान द्वारा कर सकते हैं, धारणा द्वारा नहीं कर सकते। जब फुल पास होना है तो फुल सब्जेक्ट द्वारा सेवा के निमित्त बनना आवश्यक है। अगर एक भी सब्जेक्ट में कमी है तो फुल पास नहीं लेकिन पास होंगे। कितने सब्जेक्ट है? चार सब्जेक्ट, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। तो अगर एक भी सब्जेक्ट में कमी है तो फुल पास नहीं होंगे। एक है पास विधान और दूसरी स्टेज है पास होना। जो सिर्फ पास होते हैं, पास विधानर नहीं होते हैं, तो उनको पास विधानर के अंतर में धर्मराज की सजाओं से पास होना पड़ता है। अर्थात थोड़ा बहुत सजाओं का अनुभव जरूर करेंगे। पास विधानर औरों को पास करते हुए देखेंगे, इस बात से पास होते हुए देखेंगे, सजाओं से पास होते हुए वो देखेंगे। कौन? जो पास विधानर हो। हर सब्जेक्ट में फुल पास होना है, हर खजाने की सब्जेक्ट। तो देखो, बजट करो, बजट बनाओ, अर्थात व्यस्त मत। हर सेकंड संकल्प व स्वयं के प्रति शक्तिशाली बनाने अर्थ व सर्व आत्माओं की सेवा अर्थ कार्य में लगाओ। दूसरी बात, वेट कम करो। एक तो पिछले जन्मों का रहा हुआ हिसाब किताब व बोझ समाप्त करने में लगे हो, लेकिन वह बोझ कोई बड़ी बात नहीं है। ब्राह्मण बन करके व ब्रह्मा कुमार कुमारी कहला करके, विश्व कल्याणकारी व विश्व सेवाधारी कहला करके फिर भी अगर ऐसा कोई विकल्प व विकर्म करते हैं तो बोझ उस बोझ से 100 गुना बढ़ जाता है। ऐसे कितने प्रकार के बोझ अपने संस्कारों के बस, स्वभाव के बस, ज्ञान का बुद्धि में अभिमान होने के कारण, अभिमान के बस, नाम और शान के स्वार्थ बस, स्वयं के सेलिब्रेशन प्राप्त करने के बस, अलवेलेपन व आलस्य के बस, अब तक कितने बोझ उठाए हुए। ये ध्यान पर रखना है कि ज्ञानी तू आत्मा कहलाते अथवा कंसेबुल कहलाते ऐसा कोई कर्म व वातावरण फैलाने के वाइब्रेशन होने के निमित्त न बने जिससे सर्विस के बजाय डिस सर्विस हो जाए। क्योंकि सर्विस भी हो लेकिन एक बार की डिस सर्विस 10 बार की सर्विस को समाप्त कर देती है। जैसे रबर द्वारा सब मिट जाता है, वैसे एक बार की डिस सर्विस 10 बार की सर्विस के खाते को खत्म कर देती है। और वो समझते रहते हैं कि मैं तो बहुत सर्विस करता हूँ लेकिन खाता खाली होने के कारण निशानी दिखाई देती है। लेकिन अभिमान के बस बाहर से नियमित क्यों बन जाते हैं? निशानी क्या होती है? एक तो याद में शक्ति व प्राप्ति का अनुभव नहीं होता, अंदर की संतुष्टता नहीं होगी। हर समय कोई न कोई परिस्थिति व व्यक्ति व प्रकृति का वैभव स्थिति को हलचल में लाने की व खुशी शक्ति खत्म करने के निमित्त बनते रहेंगे। बाहर का दिखावा इतना सुंदर होगा, जो अनेक आत्माएं उन्हें न परखने के कारण सबसे अच्छा खुश मिजाज और पुरुषार्थ समझेंगे, लेकिन अंदर बिल्कुल उलझन में खोखलापन होता है। नाम का खाता, शान का खाता फुल होता है। ब्राह्मणों की दुनिया में भी ऐसा होता है, लेकिन खजानों का खाता, कौन से खजाने का? ज्ञान के खजाने का खाता, अनुभूतियों का खाता खाली के बराबर होता है, अर्थात नाम मात्र होता है। और निशानी क्या होगी? ऐसी आत्मा स्वयं विघ्नों के वश होने के कारण सेवा के कार्य में विघ्न रूप बन जाती है। न खुद ज्ञान का प्रचार प्रसार विस्तार करेगी और न दूसरों को करने देगी, विघ्नों की दीवार बन के खड़ी हो जाएगी अपनी नाम और शान के कारण। नाम है विघ्न विनाशक, लेकिन बनते हैं विघ्न। ऐसी आत्माओं के ऊपर समय पर समय का जो बोझ है, वेट बढ़ने के कारण एक प्रकार के मानसिक व्यर्थ चिंतन व मानसिक अशांति ऐसे अनेक रोग पैदा कर लेते। दूसरी बात, वेट होने के कारण पुरुषार्थ की रफ्तार तीव्र नहीं हो सकती। हाई जंप तो छोड़ो लेकिन दौड़ भी नहीं लगा सकते। किसी के ऊपर वजन रखा हो, वजन की गठरी रखी हुई हो तो तेज नहीं दौड़ सकता, जंप नहीं लगा सकता, हाई जंप तो लगा ही नहीं सकते। प्लान बना देंगे कि यह करेंगे ऐसा करेंगे लेकिन सफल नहीं हो सकते। तीसरी कोई बात है, ऐसी वेट वाली आत्मा है जो विघन रूप डिस्टर्बेंस के निमित्त बनती है, वो बाप को अर्पण किया हुआ अपना तन मन व ईश्वरीय सेवार्थ मिला हुआ धन, अपना तन मन वो तो व्यस्त करती है, लेकिन दूसरों से जो ईश्वरीय सेवार्थ मिला हुआ धन होता है वो अपने विघ्नों के कारण व्यस्त करती है, अर्थात सफलता नहीं पाती, उनके व्यस्त करने का भी बोझ चढ़ जाता है। इसलिए पापों की गहन गति को अच्छी रीति जानो, अभी क्या करना है, व्यस्त मत करो और वेट कम करो। धर्मराजपुरी में जाने के पहले अपना धर्मराज बनो, अपना पूरा चौपड़ा खोलो और चेक करो पाप और पुण्य का खाता क्या रहा हुआ है और क्या जमा करना है, और विशेष स्वयं प्रति प्लान बनाओ, पाप के खाते को भस्म करो, पुण्य के खाते को बढ़ाओ। बाप दादा बच्चों के खाते को देखते हुए समझते हैं कि माला माल हो जाए, बरसात पड़ने लगी, ये प्रकृति भी पाठ पढ़ा रही है, जैसे प्रकृति अपने मौसम व समय प्रमाण अपने तीव्र गति से कार्य कर रही है, ऐसे ब्राह्मणों की कमाई जमा करने की बात है तो मौसम प्रमाण तीव्र रफ्तार से जमा करो। अच्छा, सदा परिस्थिति वेटलेस अर्थात लाइट रूप, हर सेकंड और संकल्प में भी पिछला भस्म करते भविष्य जमा करने वाले, सदा विश्व सेवाधारी स्वरूप में स्थित रहे आत्माओं को सर्व खजाने महादानी बन करके दान करने वाले, अपने शक्तियों के खजानों में संपन्न हो शक्तियों द्वारा वरदानी बनने वाले, रहम दिल आत्माएं सदा विश्व कल्याणकारी आत्माएं, ऐसी आत्माओं को बाप दादा का याद करो।